आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्चना है। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का 16वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पानी की कहानी। इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। इस पाठ में लेखक ने पानी के चक्र का अत्यंत रोचक वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ में वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर ओस की एक बूंद की जीवन यात्रा पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। ओस की जो बूंद होती है उसकी जीवन यात्रा का यहाँ पर वर्णन है कि ये कहाँ से आती है, कैसे इसका जीवन प्रारंभ होता है और फिर कहाँ चली जाती है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ पानी की कहानी। मैं आगे पढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरे कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा, चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कड़ हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। लेखक के हाथ पर बेर की झाड़ी से मोती सी एक बूंद आकर गिरी। लेखक ने देखा कि ये ओस की एक बूंद थी जो उसकी कलाई से सरक कर उसकी हथेली पर आ गई। लेखक की दृष्टि पड़ते ही, उसकी नजर पड़ते ही वो ठहर जाती है। अचानक से लेखक को लगा जैसे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई दे रही है। ध्यान से देखने पर लगा कि जो ओस की बूंद थी उसके दो कड़ हो गए हैं, दो हिस्से में अलग अलग हो गई है और यही हिलकर स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। आवाज यहीं से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो बोल रहे हों कि सुनो सुनो। मैं चुप था, फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ, झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कड़ों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। लेखक ओस की उस बूंद से बात करना आरंभ कर देता है। जब वो कहती है कि सुनो सुनो, तो लेखक भी मजे से कह देता है कि कहो कहो। तो लेखक उससे बात करता है। बूंद उसे लेखक को बताती है कि वह ओस है, लोग उसे पानी या जल भी कहते हैं, और वो उसे ये भी बताती है कि वो उसकी हथेली पर बेर के पेड़ से आई है। इस बात पर लेखक को विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि झूठी, अरे बेर के पेड़ पे क्या पानी का फव्वारा लगा है। लेकिन बूंद कहती है कि वो वहीं से आई है, वो बहुत दिनों से बेर के पेड़ के आसपास घूम रही थी नीचे, लेकिन फिर एक दिन अचानक से पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी पे से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। बूंद ने लेखक को बताया कि ये पेड़ जितने ऊपर, ये पेड़ जो है जितना ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जितना दिखाई देता है धरती के ऊपर, उतना ही धरती के अंदर भी है। बूंद ने कहा कि इस बेर का पेड़ जड़ के रूप में धरती में बहुत गहराई तक फैला हुआ है। उसकी जड़ों के रोए उसकी तरह के असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। आपने सुना होगा कि जो जड़ होती है वो पानी को अपने अपनी तरफ खींच के उन्हें अपने में जकड़ के रखती है। तो इस विशाल पेड़ को बनाने में उसके असंख्य भाइयों का योगदान है। मतलब उसने बहुत सारा पानी जो है उस पेड़ की जड़ों ने सोखा है और पेड़ को दिया है। पेड़ों को भोजन बनाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, वो भी उनकी जड़ें ही सोख कर पेड़ तक पहुंचाती हैं। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। ओस की बूंद कहती है कि मैं तो जो खनिज होते हैं भूमि के अंदर उनको अपने शरीर के अंदर घोलकर आनंद से इधर उधर घूम रही थी, लेकिन तभी अचानक से मेरा शरीर जो है एक रोए से टकरा जाता है, जड़ के एक रोए से, और फिर वो कांप जाती है। दूर भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन जड़ जो एक बार पानी को पकड़ लेती है तो फिर उसे छोड़ती नहीं है और उसे खींच लिया गया। कहानी सुनने में लेखक को मजा आने लगा था और उसकी उत्सुकता जो है वो और बढ़ गई थी। तो वो पूछता है कि इसके आगे क्या हुआ। बूंद कहती है कि इसके बाद उसे एक कोठरी में बंद कर दिया गया और फिर बाद में उसे लगता है जैसे मानो उसे दबाया जा रहा हो। वहां पर उसी के जैसी और बूंदे भी लाई गई थी। उसका और एक भाई भी था तो उसके लिए जगह बनाने के लिए उसे दबाया जा रहा था। एक और बूंद उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच रही थी और इन दोनों के बीच में वो बूंद पिस रही थी। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कर उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। बूंद कहती है कि लगभग 3 दिन तक वो वहीं ऐसी फंसी पड़ी थी, लेकिन जैसे तैसे वो इन पत्तों के छेदों में से बच के जान बचाकर भागकर आई है। उसने सोचा था कि जैसे ही वो पत्ते पर पहुंचेगी तो भाप बनकर उड़ जाएगी, सूर्य की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाएगी, लेकिन जब वो बाहर निकली तो उसे पता चला कि रात होने वाली है, तो सूर्य जिसकी वजह से पानी को उड़ने की शक्ति मिलती है, भाप बनकर उड़ जाता है, वो पहले ही जा चुके हैं और वायुमंडल में पहले से ही इतने जलकण हैं कि वहां इसके लिए और स्थान नहीं है, ये उड़ नहीं सकती है। तो वह बस पत्तों पर ही सिकुड़ कर रह जाती है और वो कहती है कि अभी जब मैंने तुम्हें देखा तो फिर अपनी रक्षा के लिए कूद कर तुम्हारे हाथ पर मैं आ गई। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तब तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। लेखक को उसकी कहानी सुनकर दुख होता है और उस पर प्रभाव भी पड़ता है और वो कहता है कि जब तक तुम मेरे पास हो तब तक कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकता, कोई पत्ता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बूंद कहती है, लेखक को धन्यवाद कहती है और फिर कहती है कि मुझे सिर्फ तभी तक रक्षा चाहिए जब तक कि सूर्य नहीं निकल जाते। जैसे ही सूर्य निकलेगा मुझमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी और मैं गायब हो जाऊंगी, लेकिन तब तक मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना देती हूँ जिससे कि तुम्हारे हाथ नहीं थकेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य के सहरसों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक आग का गोला थी। बूंद अपने पुरखों के विषय में बताते हुए कहती है कि बहुत समय पहले उसके पुरखे अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्य मंडल में लपटों के रूप में रहती थी। उस समय ब्रह्मांड में उथल पुथल मची थी और अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। बूंद के पुरखे सूर्य के धरातल पर घूमते रहते थे। एक दिन की बात है, सूर्य से लाखों गुना बड़ा प्रकाश पिंड सूर्य की ओर बढ़ने लगा, जिसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टूटकर कई टुकड़ों में टूटा और गिर गया। इन्हीं टुकड़ों में से एक हमारी पृथ्वी भी है। इन्हीं टुकड़ों में से एक जो आग का गोला था वो क्या बना? हमारी पृथ्वी बनी। हमारी पृथ्वी आरंभ में एक आग का गोला थी ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। पहले से कोई 70वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। आग का गर्म गोला जब ठंडा हुआ तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया के कारण दोनों का कोई अस्तित्व ना बचा, जिसके कारण बूंद पैदा हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रासायनिक अभिक्रिया हुई और जिसके कारण बूंद बनी, बूंद की उत्पत्ति हुई। यह बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के आसपास घूमती रही और जब इसे होश आया तो इसने स्वयं को बर्फ के रूप में पाया। अब जानते हैं पानी के तीन रूप होते हैं, द्रव्य, तरल और भाप। पानी नॉर्मल होता है, इसको फ्रीज कर देते हैं तो बर्फ बन जाती है, ठोस रूप हो जाता है, और इसको अगर हम गैस पे रखते हैं तो ये भाप बनकर उड़ जाती है। तो पहले ये भाप के रूप में थी, लेकिन जब ठंड हुई तो ये बर्फ के रूप में जम गई थी। बूंद का आकार पहले की तुलना में 17वें भाग के बराबर रह गया था। इसका जो आकार था बर्फ बनने के बाद वो बहुत छोटा हो गया था। जब चारों ओर फैली हुई बर्फ पर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो उसका सौंदर्य जो है वो बिखर जाता था। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। बड़े आनंद का कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। लेखक कहता है कि वहाँ पर तुम्हारा समय वो बहुत आनंद का समय रहा होगा। बूंद कहती है कि हाँ, कई लाख वर्षों तक ये समय ऐसे ही चलता रहा। तो लेखक चौंकता है, कई लाख वर्ष? तो बूंद कहती है, हाँ, 100-200 वर्ष मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेखक अपने आप को धन्य मानता है और बूंद के प्रति उसकी वृद्धा बढ़ जाती है जब उसे ये पता चलता है कि वो इतने लंबी आयु वाले जीव से बात कर रहा है। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें ना था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। भूल कहती है कि एक दिन वो ऐसे ही आराम से बैठे हुए कहानियां सुन रहे थे कि अचानक से ऐसा लगता है कि वो सरकने लगे हैं। सबके ऊपर हवाइयां उड़ जाती हैं कि ये कैसे हुआ और अब क्या हो रहा है और अब हम क्या करेंगे। इतना लंबा समय इन्होंने आनंद से काटा था कि अब दुख सहने की हिम्मत इन लोगों में ना थी। ढूंढने पर पता चला कि इनके ही वजन से जो इनके नीचे वाले भाई हैं, जो नीचे की बर्फ थी वो दबकर पानी हो गई है और अब उनका शरीर जो है वो ठोसपन छोड़ चुका है, वो द्रव्य बन चुका है, पानी बन चुका है और अब उनके शरीर पर ये बर्फ जो है वो फिसल रही है। नेक्स्ट पेज 102। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। बूंद कहती है कि वो कई महीनों तक ऐसे ही समुद्र में बर्फ बनकर घूमती रही, लेकिन एक दिन उसकी गर्म जल धारा से मुलाकात हो जाती है और उसे ठंडक पहुंचाने के लिए जब उसे उसकी गर्मी इन लोगों ने सोखनी शुरू की तो इसके फलस्वरूप में ये बूंद जो थी वो पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। समुद्र का हिस्सा बनने के बाद बूंद ने जो दृश्य देखा वो बताने के लायक है। उसे पहले लगता था कि समुद्र में सिर्फ जल ही होता है, जल की कणें ही होती हैं, लेकिन अब उसे पता चला कि वास्तव में समुद्र में अन्य भी कई जीव होते हैं और उसमें पूरा नमक भरा होता है। पहले तो समुद्र का खारापन बूंद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। एक दिन बूंद ने सोचा कि समुद्र के ऊपर तो उसने बहुत घूम लिया है, अब समुद्र की गहराई में जाकर देखना चाहिए कि इसका क्या रहस्य है। तो वह समुद्र की गहराई में जाती है। वहां पर उसने बहुत अजीब तरीके के अलग अलग तरीके के जीव देखे, कुछ रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां और मनुष्य से कई ज्यादा बड़ी बड़ी मछलियां, हाथों वाली मछलियां, कई हाथों वाली मछलियां और भारी भारी कछुए और ऐसी मछली जो मनुष्य से काफी बड़ी होती थी, उसके 8 हाथ होते थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को पकड़ लेती थी। नेक्स्ट पेज 103। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। बूंद जब समुद्र की और अधिक गहराई में जाती है तो वो देखती है कि वहां पर बहुत अंधेरा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाता है और बूंद को वहां देखने में दिक्कत होती है। उस देखने से अंधेरे में देखने के कारण उसके आंख जो है दुखने लग जाती है। वो सोचती है कि यहाँ पर इन जीवों को दिखाई कैसे देता होगा। तभी अचानक उसके सामने एक ऐसी मछली आती है जिसके शरीर से चमक निकल रही है। उस चमक से ही इसे अपना मार्ग दिखाई देता है और इसी प्रकाश को, इस रोशनी को देखकर छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती हैं, तो यही इसका शिकार भी बन जाती हैं। जब इसे भूख लगी होती है तो ये उन छोटी मछलियों को खा जाती है। विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है, छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। जब बूंद समुद्र की तह में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर भी एक प्रकार का जंगल है, छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत सारे वहां पर उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं और इन पहाड़ियों की गुफाओं में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं जो या तो अंधे हैं या फिर बहुत ही ज्यादा आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसा जाता है। ये सब पूरे समुद्र का भ्रमण करना, गहराई तक देखना, इसमें बूंद को कई साल लग गए। फिर बाद में इसने सोचा कि ऊपर वापस लौट चलते हैं और उसने कोशिश की, लेकिन अब ये असंभव हो चुका था क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा पानी था। लगभग 3 मील मोटी तह उसके ऊपर थी। फिर उसने सोचा कि भूमि में घुसकर अपनी जान बचा ली जाए और ये कोई नई बात नहीं थी। बहुत सारे जलकर इसी तरह अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंस जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोल उठे, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। बूंद अपने कुछ और जलकणों के साथ, भाई बंधुओं के साथ चट्टानों में घुस जाती है। कई सालों के बाद कई मील मोटी चट्टान में घुसकर ये पृथ्वी के खोखले स्थान पर निकलते हैं और वहां इकट्ठे होकर इन लोगों ने सोचा कि इन्हें क्या करना चाहिए। कुछ ने कहा कि बस यहीं पड़े रहना ही ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे उत्साही युवा भी थे जिन्होंने ये कहा कि हम खोज करेंगे, हम पृथ्वी पर इधर उधर घूम के, इसके हृदय पर घूम कर ये देखेंगे कि इसके भीतर आखिर है क्या। नेक्स्ट पेज 104। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओस्जन से हद्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी। जब बूंद अपने साथियों के साथ खोज करने निकली तो एक दिन ये ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर कोई भी ठोस वस्तु नहीं थी। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और अलग अलग प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने के लिए उतावली थी। इसी स्थान के आसपास बूंद के साथ एक दुर्घटना होते होते बची। ये लोग अपनी खोज से इतने प्रसन्न थे कि बस अंधाधुंध कहीं भी किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ जाते थे, ये नहीं देखते थे कि ये कैसा है। अचानक से ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर तापक्रम टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ये गर्मी इनके लिए असहनीय थी, इसे ये सह नहीं सकते थे। इस वजह से इनके जो अगुआ थे, जो आगे चल रहे थे, वो इस तापक्रम को सहन नहीं कर पाए और जो इनका ऑक्सीजन था वो हद्रजन में विभाजित हो गया, वो भाप बढ़कर उड़ गए। इससे बूंद चौकन्नी हो गई और अपने और साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है
और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और उसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो।
अभी वह कुछ ही दूर गई थी कि एक और विस्फोट हुआ और वह ऊपर आ गई। वह बहुत ऊंची उठकर भाप दल के साथ मिलकर हवा की पीठ पर सवार होकर आकाश में स्वच्छंद उठ गिर रही थी। पीछे देखने पर पता चला कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली हुई धातुएं और लपटें, ऐसी कई चीजें निकल रही हैं। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था, अनोखा था और इसे बार बार देखने की इच्छा बूंद को हो रही थी। लेखक कहता है, मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती तो कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी ओचले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। बूंद कहती है कि हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। हम लोग जब बाहर आए, ऊपर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही बहुत सारी भाप मौजूद थी। इन्हें भाप का एक बड़ा दल मिलता है। ये लोग आपस में मिल जाते हैं और यहाँ आंधी के दर्शन भी बूंद को होते हैं। आंधी चल रही होती है। इन लोगों को पीठ पर लाते लाद कर, मतलब पीठ पर उठा कर आंधी इधर उधर ले जाती है हवा जो है। और ये दिन इनके लिए बड़े आनंद के थे। ये स्वच्छंद आकाश में किलोले करते फिरते थे। पर वहां पर भाप कण जो है वो बहुत ज्यादा हो गए थे और इस वजह से ये लोग भारी हो गए और फिर नीचे झुकाए। मतलब एक दिन ये बारिश बनकर जमीन पर आ गए, बूंद बनकर नीचे गिर गए। जब भाप बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ठंडी होकर वर्षा के रूप में वो पानी नीचे आ जाता है। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक ओर को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। बूंद एक पहाड़ पर आकर गिरती है और वह गंदी हो जाती है। इसके बाद कुछ समय तक इसका जीवन एक पहाड़ से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में बीता। एक बार ये किसी ऊंचे शिखर से कूदे और नीचे चट्टान पर गिरे। इससे जो पत्थर था वो टूट गया। पानी में बहुत ताकत होती है। बड़े बड़े पत्थर और चट्टान पानी तोड़ देता है। बूंद कहती है कि ये जो तुम इतनी रेत देखते हो ना, ये पत्थरों को चबा चबा कर हम ही इसे रेत बना देते हैं। जिस समय हम मौज में होते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु भी हमारे प्रहार को सहन नहीं कर सकती है। उसे भी कितनी भी कोई भी कठोर वस्तु हो, जल की धारा जो है, प्रचंड धारा उसे तोड़ देती है। इतनी ताकत जल की धारा में होती है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसीलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के बीच एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। पत्थर को तोड़ने के बाद अपनी जीत की खुशी मनाते हुए ये लोग इधर उधर बिखर गए। बूंद की इच्छा थी कि बहुत दिनों से उसने समतल भूमि को नहीं देखा है, इसीलिए वो एक छोटी धारा में मिल गई।
वे दिन भी बहुत मजे के थे। ये भूमि को काटते थे, कभी पेड़ों को खोखला करके उन्हें गिरा देते थे। बहते बहते ये बूंद एक दिन एक नगर के पास पहुंचती है। उसने देखा कि तट पर ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। उसे देखने की उत्सुकता बढ़ी और अपने ही हाथों अपने दुर्भाग्य को इसने न्योता दे दिया। वो जैसे ही उसके पास पहुंचती है, वो उसे और उसके साथियों को एक मोटे नल में खींच लिया जाता है। मतलब बूंद अब नल के पास पहुंच गई है, जहां नल से पानी निकाला जाता है। कई दिनों तक वो एक नल से दूसरे नल तक घूमती रही। बस वो हर समय उसमें से निकल भागने की कोशिश करती थी। किस्मत भी उसके साथ थी। एक दिन रात के समय वो ऐसी जगह पहुंची जहां पर नल टूटा हुआ था। बूंद तुरंत उसमें से निकल कर भाग जाती है और पृथ्वी में समा जाती है, और अंदर ही अंदर घूमते घूमते वो इस बेर के पेड़ के पास पहुंच जाती है। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। बूंद की इतनी कहानी सुनाते सुनाते तब तक सूर्य निकल आए। लेखक कहता है कि बस बूंद कहती है कि हाँ अब मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकती क्योंकि सूर्य निकल आए हैं, अब तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते, मुझे जाना ही पड़ेगा। और वो ओस की बूंद धीरे धीरे घट जाती है और आंखों से ओझल हो जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसे भाप बनाकर उड़ा देता है। और इस तरह से ओस की बूंद की कहानी, या ये कहिए कि पानी की कहानी पूरी होती है। आपने पानी का पूरा चक्र देखा कि किस तरह भाप जो है वो पानी बनकर गिरती है, बर्फ किस तरह से पानी बनती है, फिर पानी से भाप बनकर उड़ जाती है, और वही भाप किस तरह से फिर वर्षा के रूप में नीचे जमीन पर आकर गिरती है। तो यही है पानी की कहानी। आपको ये पानी की कहानी कैसी लगी? इंटरेस्टिंग कहानी है पानी की। तो ये कहानी पूरी हो गई है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, होमवर्क है ये आपका। होमवर्क में सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ऑडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।